ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इंग्लिश और हिंदी राष्ट्रभाषा। हरे कृष्णा। तो आज के इस जगन्नाथ भगवान और जानकी प्रिया देवी, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबका स्वागत है। और अपने बच्चों का जन्मदिन संपन्न करने का ये बहुत सुंदर तरीका है। इससे हम हमारे बालक के लिए भगवान का और भगवान के भक्तों का आशीर्वाद चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारे बालक को हम किसी पार्टी में ले जा सकते हैं और डिस्को बजा सकते हैं, नाच भी कर सकते हैं डिस्को पर, लेकिन सबसे अधिक जरूरत जो हमारे बालकों के लिए है वो वैष्णवों का आशीर्वाद। अगर वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं है और उसके अलावा बाकी सब कुछ है, धन है, दौलत है, पद है, उन्नति है, उत्कर्ष है, समृद्धि है, सब कुछ है, फिर भी हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ये सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना होता है और वैष्णवों का आशीर्वाद और कृपा जो है वो हमारे साथ में आती है। इसलिए भगवान को केंद्र स्थान पर रखकर किसी भी उत्सव को मनाना ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। अगर भगवान केंद्र स्थान में नहीं है और बाकी सब कुछ है तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वह सब कुछ यहीं पर छूटने वाला है। इसलिए जन्म कर्म हो या विवाह संस्कार हो या नामकरण विधि हो या और कोई संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, गृह प्रवेश संस्कार हो या अंत्य संस्कार हो, संन्यास संस्कार हो, दीक्षा संस्कार हो, अगर इन सब संस्कारों के बीच में केंद्र स्थान में भगवान है तो सब संस्कार सब उत्सव संपन्न है और परिपूर्ण है। और भगवान केंद्र स्थान में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। उन घटनाओं में से हमारे हृदय में कभी भी समाधान और आनंद का उत्पन्न नहीं होगा, आनंद उत्पन्न नहीं होगा, केवल द्वेष, ईर्ष्या, गॉसिप ये सब होता है बाकी के फंक्शंस में। तो भगवान केंद्र स्थान में होते हैं, जैसे जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान, यहाँ पर भी विराजमान हैं, इतो जगन्नाथ परोतो जगन्नाथ जगन्नाथ यहाँ पर भी है, जगन्नाथ यहाँ पर भी है, जगन्नाथ इधर भी है, जगन्नाथ उधर भी है। दिस इज परफेक्शन। जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए उपदेश किया गया है, आदेश किया गया है। तो संक्षेप में अगर आप जगन्नाथ जी को गौर से देखेंगे तो जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं और जगन्नाथ जी का जो दर्शन है, इसी के लिए जगन्नाथ जी अवतरित हुए, केवल देखने के लिए और लोगों को उनको दर्शन देने के लिए, बस दैट्स ऑल। क्योंकि जब ये महाभाव में कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी जब रुक्मिणी के सत्यभामा के महल के बाहर पड़े थे, महाभाव में जब गए तब बेहोश होकर जब गिर गए थे, तब नारद मुनि जी वहां पर आए थे। और नारद मुनि ने देखा इनका अद्भुत स्वरूप, दो हाथ आगे हैं, हाँ, और पैर है नहीं, शरीर के अंदर घुस गए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, खुली हुई हैं फिर भी बहुत बेहोश अवस्था में है, इतनी बड़ी मुस्कान है कि कान तक पहुंच चुकी और उनको देखने से नारद मुनि वैसे ही प्रेमी भक्त है भगवान के, भगवान पर उनका शुद्ध प्रेम है, बड़े विशेष भक्त हैं भगवान के, वो बहुत प्रेमी भक्त हैं। तो प्रेम तो है ही शुद्ध प्रेम, लेकिन जैसे ही वो शुद्ध प्रेमी भक्त भगवान को ऐसी दिव्य अवस्था में देखते हैं तो उनके अंदर से प्रेम के फव्वारे निकलते हैं, एक्स्ट्रा लव, अतिरिक्त भाव जो है वो प्रकट हो जाता है, जिससे उनको खुद को भी आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या यह दर्शन है जिसको देखकर मेरे हृदय में से ऐसे आनंद उमड़ रहा है जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कैसे हो रहा है। सो नारद मुनि ऐसे विशेष आनंद का अनुभव करते जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था भगवान को दर्शन करते समय। लेकिन देखिए शुद्ध भक्त कैसे होते भगवान के, वो जब खुद किसी आनंद का अनुभव करते हैं तो उनका आनंद का अनुभव करना भी निस्वार्थ होता है और परमार्थपूर्ण होता है। कैसे परमार्थपूर्ण होता है? उस आनंद में खुद डूबते हुए भी उनके मन में ये विचार आता है, वो भूल नहीं जाते, विचार आता है कि भौतिक दुनिया के लोगों का कैसा होगा, उनका मैं कल्याण कैसे करूं। तो खुद को आनंद करते हुए हम लोग जब अगर आनंद लेते तो मशगूल हो जाते, सब भूल जाते, दुनिया में क्या चल रहा है हमको पता नहीं चलता है। लेकिन यहां पर नारद मुनि जब दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, अनोखे आनंद का जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, उस समय भी उनकी करुणा जो है हृदय की वो जागृत रहती है। बद्ध जीवों के प्रति, भौतिक दुनिया में रहते हुए दुख भोगने वाले जीवों के प्रति उनकी करुणा जो है वो जागृत रहती है। उस करुणा की वजह से उनको उन लोगों की याद आती है कि कैसे मैं इस घटना का उपयोग उनके कल्याण के लिए करूं। तो वो भगवान से स्पर्श करते हैं, भगवान पुनः अपने मूल रूप में आ जाते हैं, मतलब उनके हाथ पैर सब सही हो जाते हैं और वो दर्शन देते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि हमें आपको एक हम आपसे वरदान चाहते हैं कि भौतिक दुनिया में आप इसी रूप में दर्शन देंगे और ऐसा दर्शन देंगे जिस तरह से मैंने अनुभव किया है। आपको केवल देखते देखने मात्र से ही लोगों के मन में जो प्रेम मेरे मन में आया था वैसे ही प्रेम उत्पन्न हो जाए और उस प्रेम की वजह से वो आपके धाम में चले जाए, मतलब एकदम शॉर्टकट, सुपर शॉर्टकट। वो खाली आपने को आपको देखने आए, आप इसी रूप में दर्शन दीजिए और दर्शन देखने से ही उनके मन में प्रेम की धारा बहेगी और उस धारा की वजह से वो आपके धाम में प्रवेश करेंगे। इसलिए जगन्नाथ का पूरा आविर्भाव जो है वो नेत्रोत्सव है, हमारे नेत्रों के लिए, उनके नेत्रों के लिए। वो बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रहे हैं और जहां जहां उनकी प्रेम दृष्टि पड़ रही है सब जगह प्रेम का सागर उमड़ रहा है उनके हृदय में, और जो लोग उनको देखते हैं उनके हृदय में भी प्रेम का सागर उमड़ रहा है और वो देख रहे हैं उनको भी आनंद हो रहा है सब भक्तों। तो भक्तों को दर्शन देने के लिए और भक्तों को निहारने के लिए ये जगन्नाथ जी अवतरित हुए हैं। जगन्नाथ जी एक बड़े विचित्र और विशिष्ट भगवान हैं। इनका आविर्भाव हम देखते कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, दो हाथ है, दो पैर है, सब कुछ है। विष्णु भगवान चार हाथ वाले हैं, वो सुंदर हैं बहुत। शिवजी महाराज है वो भी नॉर्मल दिखते हैं ना, लेकिन जगन्नाथ जी थोड़े से अलग हैं, उनको पैर ही नहीं है, सुभद्रा जी को हाथ भी नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो इनके भाव को समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए इस स्तर पर समझना इतना जरूरी है, इतना काफी है कि ये महाभाव प्रेम जो है उसका प्रतीक है। परम प्रेम जो महाभाव के रूप में प्रकट होता है जो केवल कृष्ण, राधा रानी और महाप्रभु चैतन्य के पास है, वो भाव को जब ये अनुभव करते हैं तो इनकी यह अवस्था होती है। कृष्ण भगवान जब उस भाव को अनुभव करते हैं, जिस भाव को प्रकट करते हैं, तब ये उनकी अवस्था होती है। तो इनको देखकर विचित्र रूप में देखना नहीं चाहिए, ये अति प्रेम का उत्कट दर्शन है, जिसको देखकर हमें भी वो अति प्रेम उत्कट दर्शन, उत्कट भावना मन में उत्पन्न होनी चाहिए, तभी इनका दर्शन, इनका अवतार हमारे लिए सफल है, हमारे लिए वो समर्पक हो गया और परिपूर्ण हो गया। तो ऐसे जगन्नाथ जी समहाउ भगवान के अनाकलनीय माने कि इनकंसीवल मर्सी से पूरे मीरा रोड में ये जगन्नाथ छा गए हैं सब जगह पर। कहीं भी जाइए आप, पूर्व में जाइए, दक्षिण में जाइए, उत्तर में जाइए, पश्चिम में जाइए, सब जगह जगन्नाथ ही जगन्नाथ है। हाँ, बड़े मंदिर में भी जगन्नाथ है और छोटे छोटे घरे में कहीं भी जाएंगे सब जगह जगन्नाथ छाए हुए हैं। जगन्नाथ क्षेत्र बन गया है, मुंबई के प्रदेश में जगन्नाथ पूरी प्रकट हो गया है, सब जगह जगन्नाथ भगवान है। ये किसी ने प्लानिंग नहीं किया है, किसी ने किसको बताया भी नहीं कि आप जगन्नाथ जी घर पे लेके आओ, कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में लेके आओ, ऐसा किसी ने किसी को गाइड नहीं किया है, अपने आप स्वतः ही हाँ ये आ रहे हैं, सबके घर में जगन्नाथ जी आ रहे हैं। पता नहीं कैसे अट्रैक्शन भक्तों के हृदय में और कैसे अट्रैक्शन उनको भी हो रहा है कि चलो मीरा रोड में सबके घर में बस जाएंगे, हाँ हाँ इस इलाके पर कब्जा कर ले। उसी तरह से जानकी प्रिया के श्यामकुंड प्रभु और भद्रा प्रिया माता जी के कन्या जानकी प्रिया के जन्म दिवस के अवसर पर ही इनका आविर्भाव हुआ था क्या, इनके घर में पधारे थे। कितनी भाग्य की बात है, जिस दिन बालक जन्म ले रहा है उस दिन भगवान भी घर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र बात है, बहुत ही योगा योग की बात भी है और बहुत आनंद की बात है। और उस बहाने वो हर साल जगन्नाथ जी का जन्मदिन और बेटे का जन्मदिन साथ में मनाते हैं, ये भी कितनी खुशी की बात है। जीवन में हर काम में भगवान को जोड़ना ही परिपूर्णता है। ऐसे कहीं भी लिखा नहीं है कि आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, सब आनंद को छोड़ देना चाहिए, सब आनंद से विरक्त होना चाहिए, सब कुछ त्याग करना चाहिए, भगवान से एक रूप होना चाहिए। अर्जुन और पांडव सब मिलकर भी चक्रवर्ती सम्राट बने थे कि नहीं, जबकि पूरे विश्व के सम्राट थे वो, पूरा ऐश्वर्य उनका, विश्व का साम्राज्य उनके हाथ में था। दे वर नॉट पुअर पीपल, एरिस्टोक्रेटिक पीपल, ऑपुलेंट पीपल, बहुत ऐश्वर्य संपन्न थे वो। तो जीवन का और इस भौतिक जगत का आनंद जो है उसको उपभोगने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि इस आनंद को मनाते समय भगवान के साथ जुड़े रहो। जब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, when we remain connected with the Lord, जो भी हम करते हैं वो परिपूर्ण है। भगवान को साथ में लेकर करना चाहिए। हमारा गलती हम क्या करते हैं कि हम भगवान को छोड़कर सब चीजों का आनंद लेना चाहते हैं। रावण भी भगवान को छोड़कर सीता का भोग लेने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। कुछ समय के लिए रहा हुआ ऐश्वर्य में, लेकिन उसके बाद सब परिवार नष्ट हो गया वो। तो हमें इस रावण की प्रवृत्ति को छोड़ देना है और उस प्रवृत्ति को अपनाना है जिसमें हम भगवान को साथ लेकर भगवान के द्वारा दिए गए सुविधाओं का उपभोग ले सकते हैं। यही जगन्नाथ जी और कृष्ण भावना का यही सार है हमारे जीवन में। चाहे हम डॉक्टर हैं या हाउसवाइफ है या गरीब है या श्रीमंत है या सुंदर दिखने में या कुरूप है या बूढ़े या जवान है या बालक हैं या धनवान हैं बहुत पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, किसी भी अवस्था में हम रहेंगे, हमको हर अवस्था में भगवान से जुड़े रहना है। यही चैलेंज है। किसी भी अवस्था में आप रहेंगे, अभी कभी अविवाहित अवस्था में हैं, फिर विवाहित अवस्था में हो जाएंगे, फिर बच्चे वाले हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर पोता पोती हो जाएंगे, अवस्थाएं बदलती जाती हैं। कभी स्कूल में है तो कभी कॉलेज में है तो MD हो जाएंगे, कभी एस्टैब्लिश्ड फेमस डॉक्टर बन जाएंगे या कोई नेता बन जाएंगे, अवस्थाएं बदली होती जाएंगी। कभी शरीर स्वस्थ रहेगा तो कभी बीमार पड़ जाएगा, लेकिन बदलते हुए हर अवस्था में भगवान से जुड़े रहना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि भगवान से जुड़े रहने का कार्य केवल मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। और अगर पशु कभी कर भी पाता है तो मनुष्य की कृपा से ही कर पाता है, और मनुष्य ने जोड़ लिया उसको तो वो जुड़ जाता है। अपने आप में पशु भगवान से अपने आप को जोड़ नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है। और इसीलिए मनुष्य का शरीर जीव को प्राप्त है। हमको अगर आज की स्थिति में मनुष्य का शरीर प्राप्त है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम पहले सबसे भगवान से जुड़ जाएं। और भगवान से नहीं जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन कितना भी बाहर से सुंदर दिखता होगा तो भी अंदर से खोखला है और निरर्थक है, इस यूजलेस एंड मीनिंगलेस। इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि इस सुंदर समारोह में आप लोग आए हैं, कुछ लोग बहुत दिन से भक्ति मार्ग को अपना कर चल रहे हैं, कुछ लोग नए नए आए हैं, कुछ लोग मेहमान हैं, सब लोगों से हमारी विनती है कि ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये मत समझना कि केवल जो हरे कृष्ण का तिलक पहनकर बैठे हैं उन्हीं के लिए ये सब जरूरी है। भगवान से जुड़ना, भगवान का नाम लेना, मांस नहीं खाना, चार नियम का पालन करना, मंदिर जाना, भगवद गीता पढ़ना, ये सब उनके लिए है जो हरे कृष्ण का तिलक लगाए हुए हैं, हमारे लिए नहीं है। हम तो अपना अपना काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर लेकर जन्म लिया हुआ है उस हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि इसी जीवन में हम भगवान से 100% जुड़ जाएं, तब जाकर भगवान का जो योजना है आपको मनुष्य शरीर देने का, वो योजना सफल हो जाती है वहां पर। नहीं तो भगवान ने जो फैसिलिटी दिया है अगर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भगवान की तरफ दंड हमको जरूर मिलेगा। अभी दोपहर को हम एक चिड़िया की बात कर रहे थे, कभी कभी आपको वक्त मिलेगा ना तो आप चिड़िया को बहुत गौर से देखना, एकदम गौर से 10-15 मिनट के लिए। जब कुछ दाना खाती है ना तो 50 बार मुड़ के देखती है, यहाँ पर कोई तो शत्रु तो नहीं है, कोई हमला तो नहीं होगा, फिर दाना खाती है, फिर 10 बार घूम के देखती है, फिर दाना खाती है। एक दाना खाने के लिए 10 बार उसको घूम के देखना पड़ता है कोई शत्रु हमला तो नहीं कर रहा है। इस तरह से हर एक जीव जब भोजन करता है तो 10 बार अपने आप की रक्षा के बारे में सोचता है। अगर हमारी हम आपको घर पे बुलाए और आपको थाली खिला दे अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया 10 आइटम की थाली, और पीछे से आपके बंदूक लगाए रखेंगे, तो खा पाएंगे क्या आप उसको? एक दाना भी नहीं खा सकते आप। लेकिन इतने भय के अंदर वो चिड़िया को और हर जानवर को, हर पंछी को उतने ही भय के अंदर अपना भोजन करना पड़ता है हर रोज हर समय। तो अगर हम मनुष्य जीवन में आने के पश्चात भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो हमारी अवस्था वैसे ही हो जाएंगी, और वैसे भयपूर्ण अवस्था में हम लोगों को अपना भोजन करना पड़ेगा। तो फिर हम सोचना पड़ेगा कि हमको क्या ऐसे अवस्था में जाना है क्या, भयपूर्ण अवस्था में भोजन करना पड़ेगा, भयपूर्ण अवस्था में अपनी रक्षा करने का प्लान करेंगे, नहीं चाहेंगे हम लोग। दोपहर को बैठ के आराम से भोजन करने की इच्छा रखते हैं, कोई भय के बिना, कोई टेंशन के बिना। इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। और भगवान बड़े दयालु हैं, एक बार भी उसको हम पुकारेंगे, एक बार भी उसके हम याद करेंगे तो वो हमको नहीं भूलते हैं कि हमने उनको याद किया था। हम एक बार याद करके जन्म भर उनको भूल जाएंगे, लेकिन हमको हमारी तरफ से एक बार जब याद उनकी होती है तो वो हमको जन्म भर नहीं भूलते हैं, अगर हम भी उनको भूल जाएं तो भी। ये श्रद्धा की बात है, और श्रद्धा है तो ये स्वयं जगन्नाथ आपके सामने विराजमान है, और श्रद्धा नहीं है तो ये केवल 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम लकड़ी है बस, और कुछ नहीं। एक श्रद्धा का ऐसा विषय है जो इस 200 ग्राम लकड़ी को परम भगवान के लिए रूप में आपके लिए प्रकट करता है, और बिना श्रद्धा के ये 200 ग्राम की लकड़ी बन जाती है। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये श्रद्धा की। फिर वो पत्थर नहीं है, पेपर नहीं है, लकड़ी नहीं है, या कोई मट्टी नहीं है, स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये शक्ति है उसके अंदर। और एक बार आपके अंदर वो शक्ति आ गई श्रद्धा की, तो केवल वो भगवान नहीं है, आपके साथ आदान प्रदान भी करेंगे, आपके साथ संपर्क भी करेंगे, आपके साथ में प्रतिसाद भी देंगे आपके भावना का। तो ऐसे ही भक्त थे बंधु मोहंती नाम के, सब कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ तो नहीं सुना होगा। बहुत गरीब थे वो ऐसे, लेकिन थोड़ा मोटा व्यवसाय करते थे हमेशा। उनके घर में जगन्नाथ जी के विग्रह थे। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। और इतने प्रामाणिक थे वो कि रोज जितना भी धंधा करते थे आकर जगन्नाथ जी को इसका हिसाब दे देते खड़े रहकर, कि आज हमने इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना घर खर्च किया। इतना उनका व्यवहार प्रामाणिक था भगवान के साथ में, नो चीटिंग। हाँ, ग्राहक को चीटिंग नहीं करते थे कभी वो। जो भी व्यवहार करते थे रोज शाम को आकर सोने के पहले भगवान के सामने उसका हिसाब किताब एक्सप्लेन करते थे, डिक्लेयर करते थे। लेकिन यथावकाश समय के अनुसार उनका धंधा जो है वो कम कम होते गया, नुकसान जो है वो बढ़ते बढ़ते गया। रोज आके भगवान को बताते थे आज इतना लिया, उतना नहीं बेचा, उतना नुकसान हो गया। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि पूरा उनका क्या कहते हैं उसको, दिवाला निकल गया, कंप्लीट फ्लैट हो गए वो, घर में दाना पानी आना बंद हो गया। 2-3-4 बालक थे उनको घर पे, बहुत अच्छी पतिव्रता और भक्त भगवान की ऐसी पत्नी थी उनके पास। एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, रिपोर्ट क्या करेंगे, सब नोटबुक खाली हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो फिर सोचा क्या करें अभी, पत्नी ने बोला अभी क्या है, तो भगवान के पास चलेंगे अभी, जिनके लिए पास रिपोर्ट कर रहे थे रोज उनको जाके मिलेंगे। तो सब लोगों ने सब उन्होंने घर भर पैक किया और बच्चों को लेकर चले पड़े। उस समय तो गाड़ी वगैरह कुछ था नहीं, वो गरीब थे तो घोड़ा गाड़ी भी करना उनके पास में नहीं था, पैदल चल के गए। वो पैदल चल के जब चले बहुत दिन के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे, और जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो बच्चों के लिए खाना भी खत्म हो गया था, बच्चे भी दो तीन दिन भूखे थे। रात के समय पहुंचे तो पत्नी पूछती आ गए तुम्हारे जगन्नाथ का गांव? बोला आ गया। बोले अभी क्या कर रहे? बच्चे रो रहे हैं भूख से। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही भगवान जगन्नाथ से मिलेंगे, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ को अपने एक परिवार के मेंबर की तरह मानते थे। तो बच्चे भूख से परेशान हो गए, सो गए, मतलब उनको इतनी ग्लानि आ गए कि सो गए। रात को एक बालक आया, बड़ी सोने की थाली लेकर आया और बोलने लगा, बंधु मोहंती, बंधु मोहंती, कोई है क्या बंधु मोहंती? ये सब लोग सो रहे हैं, बहुत देर से आवाज आ रही है, बंधु मोहंती कोई है, बंधु मोहंती कोई है? तो फिर ये जग जाता है, बंधु मोहंती, हाँ मैं हूं बंधु मोहंती। बोले जगन्नाथ के पांडा ने तुम्हारे लिए महाप्रसाद भेजा है। अच्छा, देखता है सोने की बड़ी परात के अंदर 50 व्यंजन थे, बहुत सुगंधी और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही आकर्षक टेस्टी दिखने वाले। बोले बच्चों उठो उठो उठो, देखो देखो जगन्नाथ के मंदिर से महाप्रसाद है। उठो, सब बच्चे एकदम परेशान थे भूख से, उठ गए, फटाफट उठा, उठे सब लोग, और उन्होंने रात को अंधेरे के अंदर बहुत देर तक वो प्रसाद पाया पेट भर के, और सब प्लेट खाली हो गया। हाँ, जगन्नाथ का महाप्रसाद था, 56 भोग था उसके। और जब खाली हो गया तो वही प्लेट उल्टा करके तकिया बना के सब लोग सो गए। और बहुत दिन के बाद में खाया था प्रसाद, तो बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा प्रसाद खा लिया था, सो गए सब लोग। और सुबह हो गई तो अंधेरे में उनको पता नहीं था कि सोने की थाली है कि पीतल की है कि चांदी की, क्या है, भोजन था उनको इतना पता था, भोजन खा लिया बस उन्होंने। जब सुबह हो गया जगन्नाथ के मंदिर में तो हल्ला मच गया उधर, हाहाकार मच गया कि सोने की परात गायब है, कोई चोर उठा के ले गया है रात को। तो उधर गजराज जो थे उड़ीसा के राजा, जगन्नाथपुरी के राजा, उनका अधिकार है वो जगन्नाथ के मंदिर पर, तो वहां पर खबर पहुंचती है कि चोरी हो गई है, रिपोर्ट होता है उनके पास, तो पुलिस को सब भेजते जाओ सब जगन्नाथपुरी में, चोर बाहर निकलने के पहले ढूंढ लो उसको। तो सब सैनिक चारों ओर से भाग जाते हैं ढूंढने के लिए, और एक जत्था जो है सैनिक का वहां पहुंचता है जहां पर ये लोग सो रहे हैं, और देखते हैं उनके सर के नीचे तकिए के रूप में सोने की परात जगन्नाथ के मंदिर वाली। अरे उठो, कहां से आए तुम लोग, कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? बंधु मोहंती नाम है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। बोले ये कहां से आए तुम्हारे पास, छोड़ो इसको पकड़ो। बोले नहीं, रात को एक बालक आया था नीला सा, उन्होंने कहा जगन्नाथ के मंदिर से भेजा है प्रसाद, तो हमने पाया और हम सो गए। नहीं नहीं बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हो, चलो आपको अच्छी असली स्टोरी निकालने के लिए आपको अंदर ले जाते हैं, और सब परिवार को पकड़कर जेल में बंद कर देते। और जेल में बंद करने में पता नहीं क्या होता है, 3 बार खाना मिलता है जेल कुछ भी हो उधर, पत्थर तोड़ने को लगेंगे, कुछ भी लगेंगे, लेकिन 3 बार खाना जरूर मिलता है उधर। आप चाहे तो सऊदी अरब के जेल में जाओ, इंग्लैंड के जेल में जाओ, या अमेरिका के जेल में जाओ, आजकल तो 5-स्टार होटल जैसी व्यवस्था करके रखी है, इंटरनेट में फोटो आते हैं उसके, इतना पॉश होता है अरेंजमेंट, चलता है किसी राजा का महल हो ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वह बाद में लिखा है जेल, स्विट्जरलैंड की जेल उसके अंदर बहुत सारा खाना वाना मिलता है। तो कम से कम वो ओरिसा के समय पर 3 वक्त का खाना तो हो गया ना, मतलब भगवान ने भूखे आदमी को पहले महाप्रसाद खिलाया, फिर 3 वक्त का खाने का इंतजाम कर दिया, रहने का इंतजाम भी कर दिया। उसकी अगली रात को जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आते हैं, उनको बहुत डांटते हैं जगन्नाथ जी, अरे मूर्ख राजा तुम समझते हो क्या हो अपने आप को, और मेरा भक्त है, बहुत दूर से मेरे लिए चल के आया है, तुरंत उसको रिहा करो, मेरा तुमको आदेश है, उसके लिए अच्छा घर बना के दो, और रोज मेरे महाप्रसाद की थाली जो है उसके घर में पहुंचनी चाहिए, पूरा इंतजाम कर दो उसका। तो राजा सुबह सुबह उठते ही भाग के जेल में आया, भाग भाग के, बोले क्या हो गया आज राजा जेल में कैसे आ गया? बोले किधर है बंधु मोहंती, कहाँ है बंधु मोहंती? बोला वो केमिकल में है तो राजा जाके उसके पांव पड़ता है, सब जेलर लोग एकदम परेशान हो जा रहे, क्या हो गया उसको, कल पकड़ के लाया था चोर समझ के, राजा आके आज उसको पैर छू रहा है। बोले कैसे पैर नहीं छू, जगन्नाथ स्वयं मेरे स्वामी, मेरे नाथ जो है वो मुझे आपको आदेश देके गए कि बंधु मोहंती मेरा भक्त है, उसकी पूरी व्यवस्था करने का आदेश दिया मुझे, उसको बड़े इत्मीनान से आदर के साथ में पालके में बिठा के एक बड़े महल में लेके जाते हैं, बोलो रहो आज से ये घर तुम्हारा, ये सारे सारे नौकर तुम्हारे, ये सब तुम्हारा साधन है, जब चाहे भोग मंगा लो और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद 56 भोग थाली जो है रोज यहां पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में हर रोज जगन्नाथ का 56 भोग सोने की थाली में उनके घर में आना शुरू हो गया। और रोज सवेरे बंधु मोहंती कैसे कर रहे हैं, वो थाली लेकर बाहर आकर, कोई भूखा है किसी को प्रसाद लेना है, किसी को प्रसाद लेना है, ऐसे करके जनता को प्रसाद खिला के फिर अपना भोजन किया करता था। तो भगवान जो है ना, अब बोलेंगे इतना गरीब था, वो कुछ खाने को नहीं दिया, उसको कंगाल बना दिया, उसको लाचार बना दिया, उसको खाने के लिए मोहताज बना दिया, लेकिन किसके लिए बनाया था? अगर वो इस अवस्था में भगवान नहीं लाते तो जगन्नाथपुरी नहीं आता और ये सब इंतजाम जो भगवान को देना था वो नहीं होता। हमको क्या सीखना है इसमें से? कुछ समय के लिए ऐसा परिस्थिति उसके आई, अगर उस समय आप उसको मिलते तो बोलते क्या भगवान की भक्ति करके फायदा है। देखो रोज हिसाब किताब भगवान को जिता है, इतने प्रेम से इतनी प्रामाणिकता से उनका भजन करता है, क्या लाभ है उसको उसका? बच्चे कांप रहे हैं भूख से, ये भी कोई भक्ति होती है? भगवान को ऐसा होता है क्या? क्या फायदा है ऐसे भगवान का भोजन करके? ऐसे हम लोग बोलते अगर हम उसको उस अवस्था में मिलते, लेकिन अगर हम उनको जगन्नाथपुरी मिलेंगे बोले यार सबको भगवान का भक्त बनना चाहिए सबको क्योंकि हम अभी भक्ति का जो भौतिक लाभ है उसको देखकर प्रभावित हो रहे हैं। वाह बढ़िया है, बहुत खाने का इंतजाम भी हुआ, घर का भी इंतजाम हुआ, सब कुछ कपड़ा लत्ता सब कुछ हो गया, राजकीय है ना जो होता ना मान सम्मान वो भी प्राप्त हुआ, हाँ भगवान का भजन जरूर करना चाहिए लेकिन भगवान ये हमेशा अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, जो उनके ऊपर श्रद्धा रखता है और जो उनको उनको अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करता है उनकी वो हमेशा देखभाल करते हैं। जैसे हमारे घर में बालक है, समझो मेरे घर में बालक है, कुछ नहीं कर सकता है मेरा बालक, पूरी तरह निर्भर है वो, ना टट्टी कर सकता है अपने आप, ना पेशाब कर सकता है, ना स्नान कर सकता है, ना भोजन कर सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो माता पिता पे पूर्णतः समर्पित है उसको पूछना भी नहीं पड़ता है कि कुछ चाहिए, तो उसको पूछने के पहले उसकी जो जरूरतें पूरी की जाती है। समर्पण का ये रहस्य है, एक बार हम किसी को समर्पित हो जाते हैं ना तो जिसको समर्पण किया हुआ है वो पूरी तरह हमारी देखभाल करता है, हमारे समझ के बाहर भी कर लेता है। जब बालक कोई छोटा सा 2 महीने का बालक अगर पेशाब करता है तो वो अप्लाई नहीं करता है मम्मी आई हैव पास्ट यूरिन कम एंड क्लीन मी, ऐसा कोई अप्लाई नहीं करता है, वो खाली आ करता है मुंह खोल के, तुरंत आके नई लंगोटी आती है, नया टॉवल आता है, नया वेट वाइट्स आता है, साबुन आता है, सब कुछ आता है, पाउडर आता है, एवरीथिंग कम्स, बच्चों को पता भी नहीं क्या लगाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चों को जरूरी है वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग। हाँ हम सब लोग ऐसे बड़े हो गए बाय द वे आज हम लोग यहां बैठकर कथा कर रहे हैं लेकिन हम लोग सब लोग इस तरह से ही बड़े हो गए हैं, इसी तरह से बिस्तर में पेशाब और टट्टी करते हुए, और हमारी जरूरतें पूरी की गई। जब हम कोई धन नहीं कमाते थे 20 साल तक, कोई धन नहीं कमाया 25 साल तक धन नहीं कमाया, तब तक कैसे हमारा लालन जालन हो गया, कैसे हम बड़े हो गए? भोजन मिला, कपड़े मिले, जरूरत पे सब कुछ मिला, सब कुछ हुआ क्योंकि हम किसी पर निर्भर थे और जिस पर निर्भर थे उसने हमारा जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा लिया था, इसलिए हमें कोई कमी नहीं पड़ी। उसी तरह से आज भी हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, कमाई कर रहे हैं, हम लोग के पास इतनी कैपेसिटी है, हम लोग धन कमा सकते हैं, हम इतने ऐश्वर्य संपन्न हैं, लेकिन आज भी हम उसी ही असहाय बालक की तरह है, वही हमको संभाल रहे हैं। लेकिन अगर हम जानकारी रखते हुए समझदारी के साथ अगर उनको अपना जीवन को अर्पण करते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल है, क्योंकि आज भी हवा पानी वर्षा वातावरण तापमान वो सब वही दे रहे हैं और हम लोग जी रहे हैं। जीवन के लिए जो आवश्यक है आज की घड़ी में वो सब भगवान हमको दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हमको वो दे रहे हैं। इसकी जानकारी होना यही भक्ति है, इसको समझना यही भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग मतलब तिलक लगाकर माला लेके घूमना नहीं है, भक्ति का मतलब ये समझना है और वो समझ के साथ में फिर जप करना है उनके नाम का, इस अनुभूति के साथ कि थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड, आप हैं इसलिए हम हैं, अभी आपका दर्शन नहीं हो रहा है फिर भी आपकी तरफ सब कुछ मिल रहा है। हाँ जेल में जब कोई भर्ती होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को मिलता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की योजना के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार जेल में रोज दाना पानी पहुंचता है, और जेलर जो जो प्रिजनर है, कैदी है, उसको भोजन मिलता है। बोलता है पहले मुझे वो प्राइम मिनिस्टर का दर्शन कराओ जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, फिर मैं खाना खाऊंगा। ऐसे होता है कभी? नहीं होता है। लोग खा लेते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, दर्शन नहीं हो तो चलेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं, आपका भगवान किधर है, पर दर्शन कराओ, फिर हम मानेंगे उनको कहां पर है। ये अश्रद्धा की बात है। लेकिन हमको ज्ञान के और बुद्धि के स्तर पर पता होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सब कुछ दे रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। ये सांस भी चल रही है ना, ये उनकी कृपा से चल रही है। जब तक उनका बटन चालू है हमारी सांस चल रही है, जब बटन बंद करते हैं सांस बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर हो या MD हो, PhD हो या प्रधानमंत्री हो या कोई अध्यक्ष हो देश का, तुरंत जीवन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हम आपसे विनती करते हैं, एक मैं कथा जरूर बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हम सब लोग जी रहे हैं लेकिन हमारा जीवन बहुत नश्वर है, किसी भी समय जीवन नष्ट हो सकता है। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, किसी की मौत की खबर सुन रहे हैं, किसी की अर्थी उठ रही है, किसी को शमशान लेके जा रहे हैं, किसी का बर्थडे मना रहे हैं, किसी की बर्थडे की पार्टी में आ रहे हैं। सुबह किसी की अर्थी में शमशान गए थे और दोपहर को किसी की खबर सुनी और शाम को बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। यही सच्चाई है जीवन की। लेकिन इस बाहर के माहौल जो है, महोत्सव जो मना रहे, उत्सव मना रहे हम, आनंद मना रहे हैं, इसके अंदर जो सत्य जो है यही है कि ये जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी समय ये जीवन से हम छिने जा सकते हैं, जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए हर समय ये को प्रयास करना चाहिए, चाहे ये हमारा 10वां बर्थडे हो, 50th बर्थडे हो, 75th बर्थडे हो, या विवाह संस्कार हो, या नामकरण विधि हो, या और कोई संस्कार हो हमारा, याद ये रखना है कि हमको भगवान को कभी भूलना नहीं है। स्मर्तव्यम सततम कृष्णम, विस्मर्तव्यम न जातुचित। किसी भी हालत में भगवान को भूलना नहीं है हमको, हर समय उनको याद करने का प्रयास करना है। एक माता थी, मैंने कई लोगों को एक कहानी बताई है, आपको बताना चाहूंगा। एक रानी रानी थी, उनका नाम था मदालसा, और वो बड़ी भगवान की भक्त थी। उसने मन में एक ठान लिया था कि इस दुनिया में इतना दुख है, जन्म के समय दुख है, बचपन में दुख है, बीच में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, रोग की बीमारी का दुख है, मृत्यु का सबको डर लगता है, उसका भी दुख है, तो इस दुनिया से सब लोगों को मुक्त होकर भगवान के पास जाना चाहिए। जब उसका विवाह हुआ तो उसने तय किया था कि मेरे कोख से, मेरे गर्भ से जितने बालक आएंगे उन सबको मैं ऐसे बना दूंगी कि वो इनका आखिरी गर्भ होगा, या आखिरी गर्भाशय होगा, इसके आगे किसी माता के गर्भाशय में वो जाएंगे नहीं। ऐसा ऐसा अपना निश्चय था, मैं ऐसा कार्य करूंगी कि मेरे गर्भ से निकलने वाला बालक जो है किसी और माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा मृत्यु के बाद, यह उसका आखिरी गर्भाशय होगा जिससे वो निकलेगा, ऐसा उसका एक प्रण था। इसलिए गर्भ में धारणा करने के पश्चात तुरंत ही, Day 1 प्रेगनेंसी के बाद तुरंत ही वो हर रोज अपने बालक से बात करती थी पेट के अंदर कि तुम भगवान के बालक हो, मैं तुम्हारे निमित्त की माता हूं, तुम्हारे ऐसी कई माताएं और पिताएं हो चुके हैं, ये मैं आज की आपकी माता हूं, और मेरा ये प्रण है कि आप इस जन्म के बाद दोबारा जन्म नहीं लेंगे, इस जन्म के बाद आप समझेंगे कि आप भगवान के अंश हैं और हम आपके निमित्त मात्र माता पिता हैं। आप इस दुनिया में टेम्पररी समय के लिए आए हो, आपका परमानेंट घर भगवान का घर है, और ये सब रिश्ते नाते, राज्य राज युवराज होना, ये सब कुछ जो है ये कुछ समय के लिए है, लेकिन परम सत्य ये है कि आप भगवान के धाम से आए हो और भगवान के धाम में रहोगे और वहां पहुंचना आपके जीवन का उद्देश्य है। ऐसे वो अपने बालक से गर्भावस्था में बात करती रहती थी, और जन्म के बाद दुग्ध पिता पिलाते हुए भी ये उनसे वही बात करती थी हमेशा। और उसको जवान होने के बाद में वो बालक इतना विरक्त होता था कि साधु बनकर जंगल में तपस्या करने चला जाता। एक बालक हुआ जंगल में चला गया, दूसरा हुआ बड़ा हुआ जंगल में गया, तीसरा हुआ जंगल में गया। राजा परेशान हो गया, अरे हो क्या रहा है, राज्य कौन चलाएगा, पुत्र को प्राप्त होगी। तो एक दिन समस्या इतनी हो जाती कि क्यों हो रहा है ऐसे, पता नहीं चल रहा है। तो मंत्रियों की मीटिंग बुलाते, बोला क्यों हो रहा है ऐसा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, राजा महाराज समस्या आपके अंतपुर में है, मतलब प्रॉब्लम लाइज इन योर ओन होम। आपकी पत्नी जो करती है ना, इसकी वजह सब बालक जो है सीधे जंगल का रास्ता पकड़ते हैं। बोला अच्छा, तो अभी मैं अगली बार जब बालक मेरी कन्या मेरी पत्नी गर्भवती होगी तो बालक का जन्म होते ही मैं अपने कब्जे में कर लूंगा बालक को, और उसको बड़ा मैं करूंगा, संस्कार मैं दूंगा उसको। कोई बात नहीं, रानी गर्भवती होती है, पूरे 9 महीने अपने बालक को पूरा कोचिंग करती है। हमको लगता है कि हम बालक से जन्म होने के बाद में बात करेंगे, फिर संस्कार देंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे, फिर सिखाएंगे उसको जो भी बोध देना है देंगे, लेकिन असली बोध जो बालक का होता है ना वो गर्भ से शुरू होता है। तो वो 9 महीने तक पूरे बालक को कोचिंग करती है, कंप्लीट ट्रेनिंग, और जन्म होते ही पिताजी आके बालक को लेके जाता है, वो पूरा अपना ट्रेनिंग देता है। उसके बाद बालक बड़ा होता है, जवान होता है, युवराज बनता है, और कुछ राज्य कारोबार में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि तो राजा के परवरिश में उसको होता है उसका इंटरेस्ट। और एक दिन वो शिकार खेलने निकलता है, और माता का ध्यान उस पर रहता है कि कैसे उसका उद्धार करूंगी मैं। शी ऑलवेज मेडिटेटिंग, चिंतन कर रही हो कि मुझे बालक को कैसे वापस अपने रास्ते पर लाना है। तो जब वो बालक युवराज बनकर शिकार खेलने जाता है तो ये शतराणी माता जी उसके साथ जाती है जंगल में शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलकर ये थक जाता है, तंबू में बैठ के विश्राम करता है। तब माता कहते हैं बेटा, तुम्हारे जो भाई लोग हैं ना सन्यासी बनकर तपस्या कर रहे हैं, तो यहां से बहुत ही पास में है, क्यों ना उससे आप मिल लो, भाई भाई लोगों को, आपके भाई लोग बड़े भाई हैं सब। तो माता का आदेश लेकर वो युवराज जो है वो अपने भाइयों को मिलता है जो जंगल में सन्यासी बनकर तपस्या कर रहे हैं, उनके साथ संग करता है, वहीं उसको प्रेरणा मिलती है, और वहीं से राज वस्त्र उतार कर उनके साथ में ज्वाइन कर लेता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि माता का निश्चय दृढ़ था कि मेरे बालकों को भगवान की दिशा में मुझे उद्धार करना ही करना है, किसी भी हालत में, भले ही जन्म होने के बाद बालक मेरे हाथ से छूट गया, फिर भी मैं इस बात को छोड़ूंगी नहीं कि मेरा हाथ से गया अभी क्या कर सकती हूं, नहीं मैं कोशिश करूंगी एंड तक। और भगवान ने रास्ता दिखाया उसको, और वो बालक भी भगवान के रास्ते में चला गया। इस तरह से मेरा गर्भ मेरे बालक के लिए आखिरी गर्भाशय होगा, इस प्रण को उसने पूरा किया। हमें भी इस जीवन में ये प्रण करना चाहिए कि हम भी दोबारा किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे, और हमारे बालकों को भी किसी माता के गर्भ में प्रवेश करने नहीं देंगे इसके बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, इस जन्म के अंत में हम हमारे बालक दोनों भगवान के धाम चले जाएंगे, ये निश्चय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वास्तव सत्य यही है, इस जीवन में इस दुनिया को क्या नाम दिया गया है, मर्त्य लोक, जीवन लोक नाम नहीं दिया है। इस दुनिया का नाम क्या है, मर्त्य लोक, जहां पर सबसे प्रधान क्या है, सबसे शाश्वत यानी परमानेंट, और क्या कहते हैं उसको, शाश्वत यानी कि जो हमेशा रहती है, जो कभी चुकती नहीं है, ऑलवेज देयर, वो क्या वस्तु है, मृत्यु। चाहे कुछ भी हो जाए, आप धनवान बने नहीं बने, आप अमीर बने नहीं बने, पढ़े लिखे बने या नहीं बने, आरोग्य संपन्न बने या नहीं बने, हाँ शक्तिमान बने या नहीं बने, लेकिन मरेंगे जरूर। धनवान होकर मर जाएंगे या तो गरीब होकर, लेकिन मरना निश्चित है। तो जन्मदिन के समय पर हम लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन हमको सबको सोचना है कि ये जन्मदिन कितने साल चलेगा। एक दिन और भी तिथि आएगी, तो तिथि हमारी जाने की तिथि होगी, हाँ जब केतु महादशा आएगी कभी जीवन में, तो उसके अंत में सबको बाय बाय करना होगा। उसके लिए चिंतन करने का दिन है, चाहे बालक का जन्मदिन हो या हमारा जन्मदिन हो। आज हमारा भी जन्मदिन हमारे मित्रों ने मनाया दोपहर को, शाम को भी जानकी प्रिया का जन्म मना रहे हैं, रात को किसी आरती में गए थे, दिन में भी किसी की मृत्यु की खबर सुनी। यानी सत्य क्या है, ये सारा जो माहौल है इस दुनिया का, ये भूल भुलैया है। जीवन चलाने के लिए कुछ करना जरूरी है, वो कर रहे हैं, कुछ कर्तव्यों को निभा रहे हैं, लेकिन वास्तविक बिजनेस क्या है हमारा, ये जो परमानेंट शाश्वत वस्तु है मृत्यु की, इसका उपाय करना हमारा मूल कर्तव्य है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो उसका इस्तेमाल इस चीज को उपाय ढूंढने के लिए करना चाहिए, और बाकी सब जो है वो ठीक है, चल रहा है, हमको अपना शरीर चलाना है, परिवार भी चलाना है, सब कुछ हम करते हैं, घूमने चले जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, दीपावली आती है, गणपति आता है, नवरात्रि आती है, दशहरा आता है, सब कुछ आता है, चलते रहता है, अधिक मास आएगा, चतुर्मास आएगा, निकल जाएगा। लेकिन देखना यह है कि अंतिम बुलावा आने के पहले हमको अपने जीवन को इतना योग्य बनाना है कि हम इसके अंत में भगवान के धाम में चले जाएंगे और दोबारा इस दुनिया में आकर कष्ट नहीं भोगेंगे। इसलिए आज से ही और अभी से ही, इसी वक्त से, इसी क्षण से हमको भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करनी है, और उस शरण ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग है उनका नाम। पचासों साल से हम सुन रहे हैं नाम का जप करना चाहिए, यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है, लेकिन अनुभूति हमारी अब तक पूर्णता हुई नहीं है ऐसी। वी हैव नॉट फुली रियलाइज्ड कि दिस इज दी ओनली वे एंड देयर इज नो अदर वे। कोई बोलेगा जाओ पीपल के झाड़ को प्रदक्षिणा करो, कोई बोलेगा शनिवार के दिन उधर जाओ और वहां पर नारियल फोड़ के आ जाओ, चार केला अर्पण करो, ऐसा बहुत सारा हम सुनते हैं। इधर जाओ, बाबा के पास जाओ, वो आपको तावीज देगा और वो आपको कुछ दोरी बांधेगा हाथ को और गले में। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि भगवान का नाम ही हमको तारेगा, और कोई वस्तु हमको भगवान की तरफ ले जाने के लिए संपन्न नहीं है, कोई रीति, कोई रिवाज, कोई विधि हमको भगवान के पास नहीं पहुंचा सकता है, बल्कि उनका नाम। इसलिए आप सबको हम विनती करते हैं कि जन्मदिन के ऊपर, किसी का भी जन्मदिन हो, इस पर चिंतन होना चाहिए। और आज अगर हमारे मन में भगवान के नाम के प्रति एक 10% श्रद्धा है, या 20% श्रद्धा है, या 25% है, या 50% है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि वो 100% कैसे हो जाए। यही हम आपको विनती करते हैं। कोई बूढ़ी अवस्था में होंगे यहाँ पर, कोई बालक अवस्था में होंगे, कोई अविवाहित अवस्था में है, कोई विवाहित अवस्था में है, कोई गर्भ की अवस्था में है, प्रेग्नेंट है, कोई कोई ऑलरेडी दो बच्चों की माता बन चुके हैं, ऐसे अलग अलग अवस्था में सब लोग हैं। लेकिन ये सारी अवस्थाओं का एक ही सार है कि सारी अवस्थाओं में हमको भगवान के शरण में जाना है, और ये इन उत्सवों का जैसे हम मना रहे हैं आज, इन उत्सवों को भगवान को केंद्र स्थान में रखने का प्रयोजन भी यही है कि ये उत्सव के बहाने जिनको केंद्र स्थान में रखा है उन पर हमारा ध्यान चला जाए और मन वहां लगे। उत्सव तो आज शाम को खत्म हो जाएगा 10 बजे, कल आप अपने काम पे चले जाएंगे, सुबह ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन आज के उत्सव का सफलता किसमें है, अगर भगवान के प्रति आपका 1% और आकर्षण बढ़ गया, 1% और समर्पण बढ़ गया, तो ये आज का उत्सव जो है वो सफल हो गया। और आने वाले जो घटनाएं हैं, जो खबरें हमको मिल रही है जीवन और मृत्यु की, उससे हम बोध लेंगे कि हमको इसी जीवन में उस परमानेंट जो नाम है इस लोक का, मर्त्य लोक, उस समस्या का समाधान इसी जीवन में करना है, अगले जीवन में नहीं करना है, अगले साल में नहीं करना है। अगर आपको आज लगती है कि आज समस्या है, उसका समाधान भी आज ही होना चाहिए, उसका रास्ता भी आज ही मिलना चाहिए, कल तक उस प्रॉब्लम को ढकेलने में नुकसान है और डेंजर भी है। कल वो समस्या कितनी बड़ी होकर हमारे सामने आएगी, वी डोंट नो। इसलिए आज अगर हमारा मेंदू, हमारा दिमाग शांत अवस्था में है, शरीर थोड़ा सा स्वस्थ है, बीमार नहीं है, हाँ घर में ज़्यादा झगड़े वगड़े नहीं चल रहे हैं, परेशानी नहीं है, सब कुछ सो कॉल्ड तथा कथित हम लोग शांत अवस्था में है, आज की अवस्था में तुरंत भगवान को शरण लेना चाहिए, तो कल ऐसी भयंकर अवस्था आएगी ना, तो हम लोग उनके विचार भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सुख में भगवान की याद करनी चाहिए, क्योंकि सुख में याद करेंगे तो दुख नहीं होगा। हम सब लोग दुख आने के बाद में उनकी याद करते हैं और दुख समाप्त होने पर भूल जाते हैं बाद में। कबीर जी कहते हैं कि सुख में उनकी याद करने को सीखना चाहिए, जब सुख में याद करना सीखेंगे तो फिर दुख का परिणाम नहीं होगा और दुख आने से हम विचलित नहीं हो जाएंगे, ये बुद्धिमानी की बात है। तो आज इस हम जगन्नाथ के श्याम कुंड प्रभु के घर के आविर्भाव के दिवस पर और जानकी प्रिया के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको ये शुभकामना देते हैं कि आप सब लोग इसी जीवन में, जिस अवस्था में आप है, इसी जीवन में भगवान को अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास कीजिए। और उसका एक सबसे आसान तरीका यह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है वो जुहू मंदिर के या चौपाटी मंदिर के या मीरा रोड के मंदिर के फैक्ट्री में नहीं बनाया है। हाँ, ये मत समझना कि हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं क्योंकि हम हरे कृष्णा मंदिर से। ये हरे कृष्णा मंत्र जो है वो पुराणों में और उपनिषदों में लिखा गया है, और इस तरह से लिखा गया है कि सभी अवस्थाओं का ये सार है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों को ढूंढने के बाद में उसके सार के रूप में, निचोड़ के रूप में हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है। इति षोडशकम नामनाम कलि सर्व कल्मश नाशनम नतः परतरो पाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों को ढूंढने के बाद में क्या मिलता है सार के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र। और वो आदेश को लेकर हम लोग ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाया है, इसलिए हमारे संस्था का नाम ही पड़ गया हरे कृष्ण संप्रदाय। बड़े भाग्य की बात है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र केवल हरे कृष्ण मंदिर के भक्तों के लिए नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए है। तो अफ्रीका के हो, साउथ इंडिया के हो, अमेरिका के हो, इंग्लैंड के हो, यूरोप के हो या रशिया के हो, सब मानव जाति के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने दिया है स्वयं। उसको उस भावना से स्वीकार करना ही हमारा जीवन का परम उद्देश्य है, और ये करने में अगर सफल रहे तो हमारा पूरा जीवन सफल है। हमारा डॉक्टर होना भी सफल है, पत्नी होना, पति होना, पुरुष होना, स्त्री होना, हमारा सारा पद, सारे अधिकार सब सफल है जब हम इस जन्म में भगवान के नाम को स्वीकार कर सकते। तो जब तक इस नाम के प्रति आसक्ति नहीं होती है तब तक हमारा जीवन अधूरा है, और जब इस नाम को हम पूरी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ में स्वीकार कर सकते हैं तो हमारा जीवन जिस भी अवस्था में है फिर भी परिपूर्ण है। एक बार और सब लोग दोहराएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 18 जून को है ना, 21 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी अगले महीने में, आप सब लोग उसको भाग लीजिए। जगन्नाथ रथ यात्रा में जो भाग लेते हैं वो पुनः इस दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं। जगन्नाथ भगवान के रथ में बैठकर जो दर्शन करेंगे वो दोबारा जन्म लेने की उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। 5 चीजें ऐसी है, जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेना, उनको रथ पर बैठे हुए देखना, उनको रथ पर बैठे हुए रथ को रस्सी को स्पर्श करना, रस्सी से रथ को खींचना, जगन्नाथ भगवान को दंडवत प्रणाम करना और जगन्नाथ भगवान को हाथ जोड़ना देखकर, ये 5 चीजें बताई मैंने। रथ को देखना, भगवान का दर्शन करना रथ में बैठे हुए, उनको देखकर हाथ जोड़ना, उनको देखकर दंडवत प्रणाम करना जहां पर रथ चल रहा है, उनकी रस्सी को हाथ लगाना और रस्सी को खींचना, ये 5 में से 5 या 1 कोई चीज करने से इस जन्म के अंत में हम भगवान के धाम में चले जाएंगे और दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। और ये नियम हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन सब लोगों को लागू है, और हिंदुओं को, हरे कृष्ण को नहीं, सब लोगों को लागू है। कुत्ता बिल्ली भी अगर ये करेंगे तो भी वो वापस जन्म नहीं लेंगे, इतना शक्ति है उसके अंदर। तो ये उत्सव मीरा रोड में 21 जून को मनाया जाएगा, जिस दिन जगन्नाथपुरी में महारथ यात्रा निकलेगी उसी दिन उसी समय पर मीरा रोड के जगन्नाथ की रथ यात्रा में निकलेगी। उसके 2 दिन बाद शनिवार के दिन भक्तिविदान हॉस्पिटल में भी हमारी रथ यात्रा होगी। जो लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन रथ यात्रा का लाभ जरूर लीजिए। ये जीवन की एक परम मौका है, ये परम अवसर है, परम संधि है जीवन की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।